सुबह की हल्की धूप हवेली के आंगन में फैल चुकी थी। रात की भारी खामोशी जैसे धीरे धीरे टूट रही थी। किचन से बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी और हॉल में रत्ना देवी पूजा खत्म करके माला समेट रही थी। शकुंतला अपने कमरे में खड़ी अलमारी के सामने थी, हाथ में साड़ी थी, लेकिन नजरें कहीं और। आज वो सच में जा रही थी उस घर जहां से वो एक बार टूटी हुई लौटी थी। पीछे बिस्तर पर बैठी रम्या उसे देख रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में सवाल थे, लेकिन वो चुप थी। मम्मा, उसने धीरे से पुकारा। शकुंतला जैसे ख्यालों से बाहर आई। हाँ बेटा, हम सच में जा रहे हैं। उसकी आवाज में उत्साह भी था और हल्का सा डर भी। शकुंतला कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान लाई। हाँ, लेकिन इस बार, उसने उसके पास बैठते हुए कहा, हम डर कर नहीं, अपने हक से जा रहे हैं। रम्या समझी या नहीं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। तभी नॉक नॉक, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ जाइए, शकुंतला ने कहा। दरवाजा खुला और सामने वीरेंद्र खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, वही शांत चेहरा, लेकिन आंखों में आज एक अलग ही झिझक थी। कुछ सेकंड बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर वीरेंद्र ने नजरें हल्की सी झुका ली। तैयार हो गई, आवाज में संकोच था। शकुंतला ने खुद को संभाला। हाँ, बस हो ही गया। वातावरण में एक अजीब सी असहजता थी, जैसे दोनों के पास बहुत कुछ कहने को था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी पापा, रम्या अचानक उछलकर खड़ी हो गई। वो भागकर वीरेंद्र के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। हम सच में आपके घर जा रहे हैं ना? उस मासूम सवाल ने माहौल थोड़ा हल्का कर दिया। वीरेंद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, इस बार हमेशा के लिए। उसने रम्या के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसकी नजरें एक पल के लिए फिर शकुंतला से टकराईं। इस बार उनमें एक वादा था। नीचे हॉल में विशाल पहले से खड़ा था, बैग्स तैयार। रत्ना देवी थोड़ी चिंतित नजरों से सब देख रही थीं। ख्याल रखना, उन्होंने शकुंतला के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और अगर कुछ भी गलत लगे तो वापस आ जाना, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। शकुंतला की आंखें भर आईं। जी माँ, वो झुककर उनके पैर छूती है। तथी सीढ़ियों पर खड़ा विश्वनाथ सब देख रहा था, खामोश, बस देख रहा था। उसकी नजरें सीधे शकुंतला पर थीं। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली, कोई शब्द नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। चलें, वीरेंद्री ने धीरे से कहा, और फिर तीनों, शकुंतला, विशाल और रम्या, वीरेंद्र के साथ हवेली से बाहर निकल गए। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और उसके साथ एक बड़ा फैसला भी। दिन धीरे धीरे बीत गया। हवेली आज कुछ ज्यादा ही खाली लग रही थी। शाम होते होते आसमान हल्का नारंगी हो गया और उसी वक्त विश्वनाथ अपने कमरे में खड़ा था, अलमारी के सामने, हाथ में ब्लैक शर्ट, चेहरे पर वही गंभीरता, लेकिन आज कुछ अलग था। वो तैयार हो रहा था। दूसरी तरफ अक्षरा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। ब्लैक ड्रेस, हल्का मेकअप, खुले बाल, लेकिन उसके चेहरे पर वो बेफिक्री नहीं थी जो हमेशा होती थी। आज वो थोड़ा ज्यादा सोच रही थी। क्या जरूरत थी ये सब बोलने की, उसने खुद से बुदबुदाया। मरने से पहले हाँ, वो खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दी, ड्रामा क्वीन। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ देर बाद दोनों नीचे हॉल में आमने सामने खड़े थे। कुछ सेकंड बस खामोशी। चलें, विश्वनाथ ने सीधा पूछा। हाँ, अक्षरा ने हल्के से सिर हिलाया। दोनों साथ बाहर निकले, कार में बैठे और बिना ज्यादा बात किए रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर सिर्फ गाड़ी की आवाज थी और बीच बीच में नजरों की हल्की टक्कर। रेस्टोरेंट शहर का सबसे क्लासी प्लेस, हल्की रोशनी, सॉफ्ट म्यूजिक और शांत माहौल। दोनों अंदर पहुंचे, वेटर उन्हें टेबल तक लेकर गया। आमने सामने बैठ गए। कुछ सेकंड, फिर वही खामोशी। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। अब सिर्फ दोनों थे। तो अक्षरा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, आज तुम काफी अलग लग रहे हो। विश्वनाथ ने भौं हल्की सी उठाई। अलग? हाँ, वो मुस्कुराई, कम गुस्से वाले। विश्वनाथ ने हल्का सा सिर झुकाया। तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, अक्षरा ने तुरंत कहा, आज सच में आप थोड़ा हल्के लग रहे हो। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर विश्वनाथ ने धीरे से कहा, आज घर खाली हो गया। सीधी बात। अक्षरा की मुस्कान हल्की सी भीगी पड़ी। हाँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन शायद सही वजह से। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजरों में कोई बचाव नहीं था। विश्वनाथ ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। अक्षरा ने उसे गौर से देखा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन आज जो हुआ वो जरूरी था। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली जरूरी था या मजबूरी थी। कभी कभी अक्षरा आगे झुकी, दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वातावरण फिर से थोड़ा भारी हो गया, लेकिन इस बार खामोशी असहज नहीं थी, बस गहरी थी। अक्षरा ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। वैसे मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतना बड़ा फैसला ऐसे ही ले लिया। ऐसे ही नहीं लिया, विश्वनाथ ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा तो, अक्षरा ने तुरंत पूछा। विश्वनाथ कुछ कहने ही वाला था कि तभी ट्रिंग ट्रिंग उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसके चेहरे की गंभीरता एकदम से बदल गई। अक्षरा ने नोटिस किया। किसका है? विश्वनाथ ने बिना जवाब दिए कुर्सी पीछे खिसकाई। मैं अभी आता हूँ। वो उठकर थोड़ा दूर चला गया, रेस्टोरेंट के एक शांत कोने में। अक्षरा की नजरें उसी पर टिकी थीं। हाँ, विश्वनाथ की आवाज अब धीमी लेकिन सख्त थी। बोलो। फोन के दूसरी तरफ क्या कहा गया ये अक्षरा सुन नहीं पाई, लेकिन उसने साफ देखा विश्वनाथ का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। जबड़े भीज गए थे और आंखों में फिर वही ठंडापन लौट आया था। कब? उसने छोटा सा सवाल किया। कुछ सेकंड सुनने के बाद उसने बस इतना कहा, मैं आ रहा हूँ। कॉल कट। अक्षरा की उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थापते रही थी। दिल में एक अजीब सा अंदेशा उठ रहा था। विश्वनाथ वापस आया, लेकिन इस बार वो वही पहले वाला इंसान लग रहा था। क्या हुआ? अक्षरा ने सीधे पूछा। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, मुझे जाना होगा। अभी? अक्षरा चौंकी। हाँ, लेकिन इमरजेंसी है। उसने वॉलेट उठाया, टेबल पर कुछ पैसे रखे और बिना ज्यादा कुछ कहे मुड़ गया। अक्षरा वहीं बैठी रह गई, बस उसे जाते हुए देखती रही। और इस बार उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या ये सिर्फ एक फोन था या फिर कुछ ऐसा शुरू हो गया है जो सब कुछ बदल देगा।